चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आज आपके साथ कुछ दिल की बातें करना चाहता हूं। दिल की बात मतलब, जब आज हम बात करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन की, जो ह्यूमन बीइंग है उसने शुरुआत कहां से की थी? शुरुआत की थी आदि मानव से। वो आदि मानव से और आज का सुपर ह्यूमन बन चुका है, यानी वो एक जर्नी को ट्रेवल किया जिसमें उसने जंगलों से जीवन शुरू किया, फिर उसने धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए वो सारी चीजें जो उसे जरूरत थी उनका आविष्कार किया, इन्वेंशन किया। कहा जाता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी उसे आवश्यकता पड़ती रही और उसने वो सारी चीजें धीरे धीरे इवॉल्व किया, इन्वेंशन किया, आविष्कार किया, और इसी को हमने इवोल्यूशन का नाम दिया। जैसे अग्नि की खोज हुई, फिर औजार बनाए गए जो हमने स्कूलों में इतिहास के दौरान, हिस्ट्री में ये सारी चीजें हमने पढ़ी ह्यूमन इवोल्यूशन की। करते करते वो होमो सेपियंस बन गया, आदि मानव से होमो सेपियंस यानी मानव। उसने फिर जो जो चीजों की जरूरत पड़ती गई उसने साइंस को डेवलप किया, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। एक आदि मानव के पास अगर सोचें, जब उसने आग का आविष्कार किया, औजार का आविष्कार किया, घर का निर्माण किया, वो सारी उसकी जरूरतें थी और वो जरूरतें फुलफिल होती गई और उसे आनंद आना शुरू हुआ। उसने अपनी जर्नी को बहुत ही कंफर्टेबल बना लिया, लेकिन उसके बाद इवोल्यूशन का रिवर्स होना शुरू हुआ, डिवोल्यूशन। अब वो इवॉल्व नहीं हुआ, अब क्या हुआ, चीजें डिट्यूरेट होनी शुरू हुई। यानी कि साइंस तब तक काम किया जब तक उसके आवश्यकताएं थी, उसकी नीड थी, उन नीड को फुलफिल करने के लिए उसने जो जो चीजें इन्वेंट की वो उसे यूजफुल साबित हुई, उसकी डे टू डे लाइफ को कंफर्टेबल बनाने में सहायक सिद्ध हुई। फिर इसके बाद एक ऐसा टाइम आया जहां पर चीजें एक्सेस होनी शुरू हो गई, एक्सेस यानी कि जरूरत से ज्यादा, इंफॉर्मेशन भी और टेक्नोलॉजी भी। अब वो विलासिता के लिए, लग्जरी के लिए चीजों को बनाना शुरू किया, यानी कि अब डिट्यूरेशन शुरू हुआ। अब ये इवोल्यूशन नहीं था, अब ये डिट्यूरेशन था। और ये डिट्यूरेशन 21st सेंचुरी में आज जहां आप, आज हम खड़े हैं यहां पर, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, व्यू पॉइंट्स इतनी एक्सेस हो चुकी है कि सारी चीजें डिट्यूरेट हो रही हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड डिजीज, सैड सिंड्रोम, ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन, ओवरलोडेड टेक्नोलॉजी, ओवरलोडेड व्यू पॉइंट्स। इस जर्नी में एक समय था जिसे हम वैदिक काल कहते हैं, स्वर्णिम युग, गोल्डन एज। ये वो काल था जब मानव सभ्यता अपने इवोल्यूशन के हाईएस्ट पर थी, पीक पर थी। क्यों? क्योंकि उस समय उनके पास वो टेक्नोलॉजीज थी, सारी टेक्नोलॉजीज थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। वो सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य से रहते थे। लेकिन उस वैदिक काल के बाद, गोल्डन एज के बाद, फिर चीजें डिट्यूरेट होनी शुरू हुई। उसके बाद, गोल्डन एज के बाद सिल्वर एज आया, सिल्वर एज के बाद कॉपर एज आया, और कॉपर एज के बाद आयरन एज आया। यानी अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें तो इवॉल्व नहीं हुआ, डिट्यूरेट हुआ। टेक्नोलॉजी एक्सेस हो गया, इंफॉर्मेशन एक्सेस हो गया, और उसी का एंड रिजल्ट रहा कि आज हमने स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और डिजीज पैदा कर ली। एक दूसरे से डिसकनेक्ट होने शुरू हो गए, सोशल मीडिया आ गया, मीडिया पे कनेक्ट हो गए लेकिन फिजिकली और इमोशनली डिसकनेक्ट हो गए, स्पिरिचुअली डिसकनेक्ट हो गए गॉड से। दो चीजों से हम डिसकनेक्ट हुए, एक अपने आप से डिसकनेक्ट होना शुरू हो गए क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बाहरी दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ते गई। जब एक आदि मानव था, जब जंगल में रहता था या उस समय, वो उसके पास उतना समय होता था कि वो अपने फैमिली के साथ या अपने साथ कुछ समय बिताता था। लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई, आज हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है कि हम चाहें तो एक महीना खाली बैठकर लॉकडाउन में घर में एक मिनट भी हमारे पास फुर्सत नहीं रहेगी। इतनी सारी मूवीज हैं, इतनी सारी बुक्स हैं, इतनी सारे सोशल मीडिया कंटेंट हैं, तब भी हम नहीं पढ़ पाएंगे उतनी सारी चीजों को। यानी कि हमने इतने सारा एक्सेस मटेरियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास में है जिससे हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं अपने आप से। दूसरा, समय नहीं बचा गॉड से कनेक्ट होने का, डिस्कनेक्ट हो गए वहां से स्पिरिचुअली। और एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पे तो कनेक्ट हो गए लेकिन सोशली डिस्कनेक्ट हो गए। एक दूसरे की इमोशन, एक दूसरे का पेन, एक दूसरे की फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया जिसपे हम दिखावा करते हैं, जहां पर हमारा एक नकली रूप वहां पर होता है, वो हमें उसके साथ कनेक्ट होना हमने सीख लिया। और यही नतीजा है इन सब चीजों का, जो एंड रिजल्ट हुआ वो हुआ समस्याएं। आज लाइफ में समस्याएं ही समस्याएं हैं, किसी भी डायमेंशन में बात करें, फिजिकली, फिजिकल डायमेंशन, 7 डायमेंशन होती है लाइफ की, फिजिकल, सोशल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, एनवायरमेंटल, ऑक्यूपेशनल। फिजिकली आज हम डिजीज का शिकार हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हैं, स्टेबल नहीं रहे हैं, इंटेलेक्चुअली, अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं लेकिन इंटेलेक्चुअल नहीं है हम, हमारी इंटेलेक्ट से हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आज हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो माइंड के द्वारा लेते हैं, कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा, इंटेलेक्चुअल डिसीजंस नहीं है। इंटेलेक्ट मतलब हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, वो तो वीक हो गया है। तो इंटेलेक्चुअली भी बहुत सारी समस्याएं हैं, ओवर इंटेलेक्चुअल हो गए हैं। आज इंटेलेक्चुअल उसे कहा जाता है जिसके पास बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन मैं इंटेलेक्चुअल उसे बोलता हूं जिसे नॉलेज के साथ साथ विजडम भी है, प्रैक्टिकल नॉलेज है उस चीज की। तो प्रैक्टिकल नॉलेज वाले लोग बहुत कम बच गए हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज एक्सेस में लोगों के पास में है। इसीलिए ज्यादा नॉलेज प्रॉब्लम की जड़ है, जब तक वो नॉलेज प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं है। सोशली बात करें तो मैंने बात किया ही, सोशल लाइफ में लड़ाई झगड़े, रिलेशनशिप के इश्यूज इतने ज्यादा हो चुके हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बन रही है, भाई भाई के बीच में नहीं बन रही है, इनफैक्ट कलीग्स के बीच में नहीं बन रही है। कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि आज हम अपने पड़ोसी से भी कंपटीशन कर रहे हैं, अपने कलीग से भी कंपटीशन कर रहे हैं, खुद से भी कंपटीशन कर रहे हैं आगे बढ़ने की होड़ में। पीस छिन गया है, शांति छिन गई है, सुकून छिन गया है। सोशली के बाद अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल डायमेंशन की, इन्वायरमेंटल डायमेंशन भी तो पूरी बिगाड़ दी है हमने। नेचर हमें बहुत सारी चीजें देता है, बदले में हमें भी तो उन्हें कुछ देना है। अगर वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, पेड़ हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज कर रहे हैं उसे वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो बदले में हमें भी तो उन्हें कुछ देना होगा ना। नदियां पानी दे रही हैं तो हम बदले में क्या दे रहे हैं उन्हें। यानी ये जो गिव और टेक का एक हार्मनी होता था वो भी डिस्टर्ब है। हम नेचर से सारी चीजें ले रहे हैं, बदले में दे कुछ भी नहीं रहे हैं, और ओवर यूज कर रहे हैं इस नेचर का, इन्वायरमेंट का। और उसी का नतीजा है ये जो अभी कोरोना क्राइसिस हमारे सामने में है। कोरोना क्राइसिस तो एक है, उसके पहले भी बहुत सारे क्राइसिस आए, जैसे उत्तराखंड की त्रासदी आई थी, पहाड़ों पर हमने एनक्रोचमेंट किया, तो कहीं ना कहीं नेचर अपना बदला निकालेगा। फ्लड आ रहा है, देरी तो देख रहे हैं न्यूज, यानी इन्वायरमेंटल डायमेंशन डिस्टर्ब, ऑक्यूपेशनल डायमेंशन। इस बात में मैं ये बोलना चाहूंगा, आज आप देखिए कितने लोग सेटिस्फाइड हैं अपने प्रोफेशन से, डिससेटिस्फाइड हैं, फुलफिलमेंट महसूस ही नहीं करते, स्ट्रेस महसूस होता है इन्वायरमेंट में, वर्क प्लेस में जाकर, फाइनेंशियली डिस्टर्ब चल रहे हैं, इनसिक्योर फील हो रहा है। यानी ऑक्यूपेशनल डायमेंशन, फाइनेंशियल डायमेंशन, बिजनेस की डायमेंशन भी डिस्टर्ब है आज। फिर बचती कौन सी डायमेंशन है? एक स्पिरिचुअल डायमेंशन, उसका तो बात ही मत कहें। स्पिरिचुअल डायमेंशन रिलीजियस हो गई है, स्पिरिचुअल डायमेंशन और रिलीजियस डायमेंशन बिल्कुल डिफरेंट है। स्पिरिचुअली मतलब हम स्पिरिट हैं, इस बात का एहसास होना, और ये स्पिरिट गॉड के साथ कनेक्टेड है, डिवाइन पावर के साथ कनेक्टेड है, हायर स्पिरिचुअल पावर होती हैं, हायर स्पिरिचुअल फोर्सेस हैं उसके साथ कनेक्टेड है, इस बात को भी भूल चुके हैं। तो ये स्पिरिचुअल डायमेंशन आज सबसे ज्यादा लैकिंग है, या यूं कहूं आज 21st सेंचुरी में मेटलिस्टिक क्राइसिस नहीं है, इनफैक्ट मेटलिस्टिक चीजें ओवरलोडेड हैं, ज्यादा है, एक्सेस है, क्राइसिस है स्पिरिचुअल डायमेंशन का, स्पिरिचुअलिटी का। और स्पिरिचुअलिटी को रियल वे में समझाने वाले भी बहुत कम लोग बच गए हैं, प्रैक्टिकल, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकली फील किया हो, और जो स्पिरिचुअलिटी को आज के परिवेश में मॉडर्न तरीके से समझा सकें कि हम कैसे इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में रहकर स्पिरिचुअल बीइंग जो हमारी आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को भी जी सकें, कैसे अपने साथ कनेक्टेड, गॉड के साथ कनेक्टेड और दूसरों के साथ कनेक्टेड फील कर सकें। और ये शायद जो कोरोना आया है, मैं इसको स्पिरिचुअल डायमेंशन के हिसाब से ही समझ रहा हूं, क्योंकि मैंने इसे एक मेडिकल डॉक्टर के नाते मेडिकल डायमेंशन से समझने की कोशिश की, कोई आंसर नहीं मिल पाया, मैं ही क्या पूरी दुनिया के डॉक्टर्स इसका आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आज हम इंसान चांद पर पहुंच चुके हैं, सैटेलाइट्स की दुनिया है, एक सेकंड में हम बटन दबाएं मिसाइल हमारे कंट्रोल में है, लेकिन ये कोरोना को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एक साल करीब करीब होने वाला है, लेकिन वैक्सीन का अभी तक नहीं आता पता है। यानी हमारी टेक्नोलॉजी कितनी भी इजाद हो, आज हम एकदम विवश टाइप महसूस कर रहे हैं, मजबूर महसूस कर रहे हैं अपने आप को, महसूस कर रहे हैं कि बस घरों में बंद रहना ही इसका इलाज है। तो यानी कोरोना ने हमें अपनी औकात दिखा दी, हम ह्यूमन बीइंग की, कहां हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम मार्स पे घर बसाएंगे, वो कुछ बिल्डर्स, कुछ टेक्नोक्रेट्स ने कहा कि चांद पर घर बुक कीजिए। अरे भाई, पहले पृथ्वी को तो हम रहने लायक बना लें, वहां पर भी एनक्रोचमेंट करेंगे, चांद को भी बर्बाद कर देंगे। कम से कम आज हम चांद को अपनी शेरो शायरी की दुनिया में तारीफ तो कर पा रहे हैं, उसके ऊपर शेरो शायरी बन तो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हम चांद पर भी पहुंच जाए और वहां पर भी फिर कोरोना हमारे कोरोना को लेकर आ जाए, और फिर वो चांद शेरो शायरी के लिए भी यूज नहीं हो पाए। सोचने की जरूरत है हमें, ऐसे नहीं चलेगा। हम वायरस के लिए वैक्सीन बनाने की सोच रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो हम ह्यूमन बीइंग है, हम वायरस हैं और कोरोना हमारे लिए वैक्सीन है। सोचिएगा जो बात मैं बोल रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ह्यूमन बीइंग एक वायरस की तरह काम कर रहे हैं इस ब्रह्मांड के लिए, और गॉड ने, नेचर ने कोरोना की वैक्सीन बनाई है ताकि ये ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल किया जा सके, और हम उल्टा क्या कर रहे हैं, कोरोना को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन ढूंढ रहे हैं। इस एंगल से सोचने की जरूरत है। ये बात जो मैंने बोली, एक बहुत अच्छी फिलोसोफर हैं, उन्होंने कही थी, मैंने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर सुना था, मुझे उनकी बात बिल्कुल सटीक लगी। एक्चुअल में हम ह्यूमन बीइंग वायरस हो गए हैं, तहस नहस कर दिया हमने सब चीजों को, ओवर क्राउडेड है, ओवरलोडेड है, ओवर इंफॉर्मेशन है। न्यूज चैनल देख लीजिए, याद कीजिए वो जमाना जब डीडी न्यूज होता था, कुछ न्यूज आती थी एक घंटे की और वो ऑथेंटिक होती थी। आज न्यूज का भरमार है 24 घंटे में कितनी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है उसमें से ऑथेंटिक शायद 1% ही होगी। न्यूज मतलब वो अपना पर्सपेक्टिव समझा रहे हैं। आज एक न्यूज चैनल पर एक जो न्यूज रीडर है वो अपना पर्सपेक्टिव दिखाता है, वो ओरिजिनल न्यूज नहीं सुनाता। आप 3 न्यूज चैनल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये भाजपा ठीक कर रही है, 3 न्यूज चैनल को देखेंगे तो लगेगा कि भाजपा गलत कर रही है। कोई एक पार्टी से प्रायोजित है, कोई दूसरी पार्टी से प्रायोजित है। ये बातें मुझे बोलनी नहीं चाहिए क्योंकि मेरा मकसद यहां किसी की बुराई करना नहीं है, लेकिन ये बोलने पर अंदर से मजबूर हो रहा हूं क्योंकि जो ओरिजिनलिटी, जो ऑथेंटिक कंटेंट होता था वो आज मिसिंग है। किस पर विश्वास करें? न्यूज सुनना बेमायने लगने लग गया है। ऐसा लगता है कि न्यूज चैनल खोल के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जबकि न्यूज सुनना, अपग्रेडेड रहना एक इंटेलेक्चुअल पर्सन की निशानी होता है। आज ऐसा लगता है कि जब हम न्यूज सुन रहे हो हम कचरा भर रहे हैं अपने अंदर। उसका कारण यह है कि ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन और ऑथेंटिसिटी जीरो। तो टू सम अप, मैं सारी चीजों को समराइज करूं तो हमने सब कुछ बिगाड़ दिया है। हम इवॉल्व नहीं, एक समय तक इवॉल्व हुए, अब हम उल्टा गिर रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? क्या वापिस चलें? अब लौट चलें? कहां चलें? लौट के कहां चलें? वापिस आदि मानव बन जाए, चलें जंगलों में? यह तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब हमें अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करना होगा। इस 21st सेंचुरी में अपने सोचने का तरीका, रहने का तरीका, जीने का तरीका बदलना होगा। यह लाइट एज है, 2012 से बदलाव का समय है। 2028 तक, यह 2012 से 2028 के बीच का लाइट एज, लाइट एज का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन की एज। यह मैं अपनी फिलॉसफी बता रहा हूं, आपको पसंद आए तो माने, नहीं पसंद आए तो मत मानिए। कोई साइंस नहीं बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इन चीजों का अभी कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ समय देगा। मैं केवल यह बताना चाह रहा हूं जो मुझे महसूस हो रहा है कि 2012 से ट्रांसफॉर्मेशन का समय शुरू हो गया है। अगर हम इसको प्लेनेटरी मोशन के हिसाब से सोचें तो भी 2600 साल का जो एक महायुग होता था वो कंप्लीट हो गया है। 64 के कुछ ईयर्स का, 4 साल का, 4-4 पीरियड होते थे, चक्र होते थे, युग, 4 युग बदलने का समय आ गया है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। आयरन एज 2012 के बाद से अब खत्म होकर हम वापस नए पीरियड में एंटर कर रहे हैं। लाइट एज अभी 2012 से लेकर 2028 तक चलेगा, एक रफ एस्टिमेट जो मुझे लगता है। शायद कुछ पुराणों में कहा गया है कि कल्कि अवतार आएंगे, मुझे नहीं पता कि अवतार क्या होते हैं। शायद मैं इतना बड़ा कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूं, मैं एक छोटा सा डॉक्टर हूं, एक आम इंसान हूं। थोड़ी बहुत समझ जो मैंने वैदिक विज्ञान की ली, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मुझे लगता है, मैंने क्वांटम फिजिक्स को पढ़ा, तो मुझे लगता है कि 2012 के बाद से एनर्जी चेंज हो रही है क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंगली, प्लेनेटरी और हमारे माइंड की एनर्जी। एक तरफ पूरा ये केओस मचा हुआ है, सब जगह हाहाकार मचा हुआ है, कहीं पर भी देख लें आपस में लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ पॉजिटिव एनर्जी का उदय हो रहा है, यानी कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है। तो 2020 एक बीच का ईयर है, 8 साल उधर, 8 साल इधर, 12 से 28, ये जो बीच का ईयर है ये जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। और इस बात को शायद आप सब लोग फील कर रहे होंगे। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से बात किया, उनसे पूछा कि क्या आपने कभी इस टाइप का जो अभी तहस नहस मचा हुआ है, ये जो त्राही माम बचा हुआ है, क्या कभी आपने पूरी लाइफ में ये आपके दादा परदादा ने सुना था क्या? शायद नहीं। मैं माना, उन्होंने माना कि 1920 में, 1820 में कुछ आई थी पैंडेमिक, लेकिन शायद उस समय भी इतना त्राही माम नहीं था जितना अभी है। तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का एज तो है। और अगर हम यह भी सोचें कि 1820 में आया, 1920 में आया, तो वो भी तो हमें प्रूव कर रहा है कि हर 100 ईयर में भी एक चेंज होता है, क्योंकि एवरी 100 ईयर कुछ एनर्जी चेंजेस होते हैं, सेम टू सेम अभी हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई एनर्जी यहां पर आएंगी, अभी मुझे नहीं पता वो कौन सी एनर्जी होंगी, अवतार होंगे, क्या होंगे, लेकिन वैदिक साइंस ये बताती है कि जब जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो कुछ नई एनर्जीज पैदा होती हैं। यानी सोल, सोल भी तो एक एनर्जी है, तो वो सोल पैदा होंगी या सोल ट्रांसफॉर्म होंगी और नई सोल्स जो हैं ये नई एनर्जी को लेकर आएंगी और 2028 तक शायद कोई सुपर पावर, कोई सुपर सोल जैसे महात्मा बुद्ध आए एक समय में, राम भगवान, कृष्ण भगवान, आई डोंट नो कि वो स्टोरीज हैं या ओरिजिनल हैं, लेकिन वो जो भी थे वो सुपर ह्यूमन थे, उनकी कॉन्शियसनेस दूसरी कॉन्शियसनेस से ज्यादा रेज थी, वो एक सुपर पावर थे, सुपर सोल थे। ऐसे ही कुछ सोल्स यहां पर अभी फिर आएंगी। और एक शंबाला सिटी का बारे में बताया जाता है कि शंबाला सिटी कहीं हिमालय की तराई में, चाइना और हिमालय के बॉर्डर पे कहीं पर है, जहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि तप करते थे, वहां से कुछ सोल्स पूरे वर्ल्ड में जाएंगी और वापस पीस, शांति, सुख इन सब का संदेश लेकर जाएंगी, यानी वो नई एनर्जी अब पूरे ब्रह्मांड में राइज होगी। ऐसा कहा जाता है कि 2028 तक कुछ नई सोल्स आएंगी, नए अवतार आएंगे और वो फिर वापस हमारी इंडियन फिलॉसफी को, वैदिक साइंस को पूरे वर्ल्ड में लेकर जाएंगे, क्योंकि जीने का तरीका वैदिक साइंस ही है। जो गोल्डन एज का जो लाइफस्टाइल था वही लाइफस्टाइल आज हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है। ये है सॉल्यूशन। भाई हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, अच्छा चलिए मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से बात करता हूं। रितु जी आप मेरे साथ जुड़िए, कैमरा ऑन करें। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जब जब हमारे कंप्यूटर में, हमारे इस कंप्यूटर में, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में कोई वायरस आ जाता है, कुछ गड़बड़ आ जाती है, कुछ सेटिंग्स में गड़बड़ हो जाता है, तो हम उसे रीसेट करते हैं और रीसेट करने के बाद उसे एक ऐसे पॉइंट पर लेकर जाते हैं जहां पर वो नॉर्मली काम कर रहा था, बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा था। कंप्यूटर हमसे वो कमांड पूछता है कि बताइए कौन से समय पर आपको ले जाके रीसेट कर दूं। सुभाष जी सुन पा रहे हैं? यानी कि जब आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आता है तब आप उसे रीसेटिंग में डालते हैं और रीसेट के समय वो टाइम को चूज करते हैं जब वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा था, और जैसे ही आप वो बटन दबाते हैं कंप्यूटर उस समय की सेटिंग्स को लेकर वापस काम करना शुरू कर देता है। सेम टू सेम अभी जो प्रॉब्लम चल रही है 2020 में, 21st सेंचुरी के 2020 में ये जो प्रॉब्लम्स हैं, उथल पुथल मची है, क्योज मचा हुआ है, इसको वापस ठीक करना है तो हमें अपना रीसेट बटन दबाना होगा। और ये कहां का होगा? हमारा बेस्ट टाइम कौन सा था? गोल्डन एज का। वो गोल्डन एज का समय हमको वापस रीसेट करना होगा। काश ऐसा हो कि हम बटन दबाएं और गोल्डन एज का जो लाइफ स्टाइल है वो हमारे इसमें आ जाए। तो आज मैं आपको साइकोनिरोबिक के द्वारा गोल्डन एज के समय में लेकर चलूंगा और वहां का जो लाइफ स्टाइल था उसको मैं आपको बताऊंगा कि आज हमें 21st सेंचुरी में सैड सिंड्रोम को कैसे दूर करना है, वो लाइफ स्टाइल क्या था और उस समय लोग कैसा रहते थे, क्यों इतने हेल्दी थे, और वो सारी चीजें आज अगर हम अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लें तो आज हमारी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन हमारे लिए वरदान बन सकती है, जो दानव बनी हुई है, जो श्राप बनी हुई है। जरूरत है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, और लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें आती हैं, आपकी सोच, आहार विहार, व्यवहार विचार, आहार डाइट, विहार व्यवहार विचार, थॉट्स, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें जो आयुर्वेद में भी कहा गया है। तो क्या था फिर लाइफस्टाइल गोल्डन एज में, इसकी हम बात करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक पावर पॉइंट के साथ जोड़ता हूं। तो मैं बात कर रहा था गोल्डन एज के लाइफस्टाइल की। आप लोगों ने साइकोनिरोबिक ऑलमोस्ट सभी लोगों ने किया है, कुछ लोग नए हैं, जो लोग कर चुके हैं उनके लिए भी मैं आज पीएनपी गुरु मंत्र लेकर आया हूं। जैसे एनएलपी में आपने गुरु मंत्र सीखे, मैं आज आपको पीएनपी साइको निरोबिक प्रोग्रामिंग के गुरु मंत्र सिखा रहा हूं, जिसके द्वारा आज 21st सेंचुरी में भी अपने आप को हेल्दी और हैप्पी रखा जा सकता है। और ये जो गुरु मंत्र हैं, ये गोल्डन एज का लाइफस्टाइल था, तो क्या प्रैक्टिकली उसे कैसे करना है आज के दिनों में, आज के समय में अपनी नॉर्मल जिंदगी जीते हुए हम कैसे उस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, ये मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। पुराने समय की जो लाइफस्टाइल था, अगर आज हम बिल्कुल वैसा ही जीना शुरू करें तो शायद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो वातावरण अलग था, वो समय अलग था, आज का वातावरण आज का समय अलग है। लेकिन इस फिलॉसफी को, हम पुराने समय की फिलॉसफी को आज के मॉडर्न वे के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मॉडिफाई करके जो आज प्रैक्टिकल हो उसको हम जिएंगे। तो मैं, आप इस स्लाइड को देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रिपल पी, पी थ्री, तीन पी को आपको फॉलो करना है अगर आप हेल्दी और हैप्पी रहना चाहते हैं। तीन पी का मतलब क्या है? पहला है प्योर विजिबल इनपुट। आज हम इनपुट क्या ले रहे हैं? दो प्रकार के इनपुट्स हमारी शरीर में, माइंड में, ब्रेन में, बॉडी में, सोल में जा रहे हैं। एक है विजिबल और एक है इनविजिबल। तो विजिबल इनपुट्स क्या ले रहे हैं? एक है फूड, एक है एयर और एक है वाटर। और ये तीनों चीजें पॉल्यूटेड हो चुकी हैं, अडल्ट्रेटेड हो चुकी हैं, मिलावटी हो चुके हैं। फूड, एयर और वाटर तीनों ही अनहेल्दी हो चुके हैं। इन्हें वापस हेल्दी करके, प्योर करके कैसे आपको लेना है, आज हम इस पे बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे इनविजिबल इनपुट। इनविजिबल इनपुट मतलब थॉट्स एंड इमोशन, इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आज अपने माइंड को डाल रहे हैं, जो मेटाफिजिकल है, दिखाई नहीं देती, इनविजिबल है, लेकिन वो भी तो माइंड में जाके ब्रेन के अंदर और बॉडी के अंदर डिजीज पैदा कर रही है। उनको कैसे प्योर किया जाए, उन पे कैसे काम किया जाए, दूसरा इंसाइट ये होगा। और तीसरा पी है साइको न्यूरोबिक, यानी कि हमारी एनर्जी बॉडी, जो फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड एक एनर्जी बॉडी है, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाए, यह है ट्रिपल पी गुरु मंत्रा। अगर आप इन तीन पीस को लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेंगे तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि आप हेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। तो कैसे हम समझते हैं, पहले हम लास्ट वाले पी की बात करते हैं, साइको निरोबिक। साइको निरोबिक में हमें क्या क्या करना है, जो डेली करना है। एक है एनलाइटनिंग न्यूरोबिक और दूसरा है ब्लिसफुल न्यूरोबिक, जो आपने सीखा है। एनलाइटनिंग न्यूरोबिक मतलब आज्ञा चक्र के लिए किया जाने वाला न्यूरोबिक, जिसमें हम ओ के द्वारा, ओ साउंड जब हम वाइब्रेट करते हैं और आज्ञा चक्र पर डीप ब्लू कलर की लाइट, इंडिगो कलर की लाइट को फील करते हैं, वो एक्सरसाइज इस मुद्रा में की जाती है, प्राण मुद्रा में। इस मुद्रा में जब हम करते हैं, इसे हम बोलते हैं एनलाइटनिंग न्यूरोबिक। एनलाइटनिंग न्यूरोबिक कब करना है, कितनी बार करना है? एनलाइटनिंग न्यूरोबिक को हमें खाली पेट करना चाहिए, एम्प्टी स्टमक, 15 मिनट के लिए सुबह मेडिटेशन के दौरान। यानी जब आप एक्सरसाइज कर चुके हैं, प्राणायाम कर चुके हैं, फिर उसके बाद आपको एनलाइटनिंग न्यूरोबिक करना है 15 मिनट के लिए, दिन में एक बार एम्प्टी स्टमक। दूसरा है ब्लिसफुल न्यूरोबिक, जो हम हमिंग साउंड के साथ, हमिंग साउंड के साथ वायलेट कलर की एनर्जी को क्राउन चक्र पर महसूस करते हुए ज्ञान मुद्रा में करते हैं। ये एक्सरसाइज, ये न्यूरोबिक एक्सरसाइज आपको दिन में दो बार करनी है, एक मॉर्निंग में 10 मिनट के लिए और एक सोने से पहले 10 मिनट के लिए। यह हुआ दो प्रकार की निरोबिक एक्सरसाइज, फिर निरोबिक स्पा, इसको दिन में एक बार करना है। ये आपके एनर्जी बॉडी का स्पा है, क्लीनिंग है। निरोबिक स्पा 30 मिनट्स का जो स्पा है वो आपके फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी तीनों का एक क्लीनिंग करता है, प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन करता है। दिन में एक बार करना मस्ट है, जरूरी है। कब कर सकते हैं? अगर मॉर्निंग में करेंगे तो और अच्छा रहेगा, दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर किसी कारणवश मॉर्निंग में नहीं कर सकते, किसी भी समय जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, एम्प्टी स्टमक और आफ्टर फूड डजंट मैटर। अगला पार्ट है निरोबिक एक्सरसाइजेस। ये उन लोगों को करनी चाहिए जिनकी बॉडी में डिजीजेस हैं। जिस प्रकार की डिजीज है उससे रिलेटेड निरोबिक एक्सरसाइज आपको सिखाई गई है, या आने वाले इन दिनों में मैं आपको, जो लोग नए लोग हैं उन्हें फिर से सिखाऊंगा, उन्हें आपको दिन में तीन बार करना है, तीन बार, अगर आप अपनी डिजीज को हील करना चाहते हैं। अगर आप हेल्दी हैं, कोई डिजीज नहीं है, तो एक बार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिजीज हैं तो जिस चक्र से रिलेटेड डिजीज है उस चक्र की न्यूरोबिक एक्सरसाइज दिन में तीन बार करना है। अब आता है 3D इमेज विजुअलाइजेशन, जो है कंसंट्रेशन एंड क्योर मेथड। कंसंट्रेशन एंड क्योर मेथड को करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, और कुछ देर भी शांत होकर, फोकस्ड होकर अपने आप को कंसंट्रेट फील नहीं कर पा रहे हैं। पुराने समय में ध्यान करवाया जाता था, जैसे किसी एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करवाया जाता था ताकि कंसंट्रेशन पावर, फोकसिंग पावर हमारे माइंड की शार्प हो सके। त्राटक, मोमबत्ती को देखना, वो भी एक प्रकार का कंसंट्रेशन है। लेकिन यहां पर साइकोनिरोबिक साइंस के अंदर जो आपको कंसंट्रेशन मेथड है, स्टीरियोग्राफिक 3D इमेज विजुअलाइजेशन मेथड के द्वारा करवाया जाता है। इसमें क्या होता है, आप को स्टीरियोग्राफिक इमेज डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के दिए गए हैं, उसको आपको कुछ देर के लिए फोकस करना है, देखना है। कैसे देखना होगा? उसके अंदर एक हीलिंग स्पेस बनाया हुआ है, यानी कि वो डायग्राम 2D में है, लेकिन जब आप उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, उसके अंदर आपको एक 3D स्पेस दिखाई देता है, वो है हीलिंग स्पेस। जब तक आप उस 3D स्पेस में पहुंच नहीं जाते तब तक आप हीलिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप उस हीलिंग स्पेस में पहुंच गए, 3D में पहुंच गए, तब आपकी हीलिंग शुरू हो गई। यानी उस समय जब आप 3D विजुअलाइज कर लेते हैं तब आपकी थॉट्स और इमोशन सस्टेन हो जाती हैं, बहुत कम थॉट्स आपके माइंड में आ रही होती हैं, ओवरथिंकिंग बंद हो जाती है। इसी को मेडिटेशन कहा जाता है। और साइंटिफिकली बोलें तो हमारे ब्रेन में अल्फा और डेल्टा और थीटा वेव्स आनी शुरू हो जाती हैं जब आपको वो 3D स्पेस दिखना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट कलर को विजुअलाइज कर रहे हैं तो हमारे रेटिना के थ्रू हमारे ब्रेन के डिफरेंट न्यूरॉन स्टिमुलेट होते हैं। रेटिना में कोन सेल्स और रॉड सेल्स होती हैं। कोन सेल्स डिफरेंट कलर को देखने की क्षमता रखती हैं। तो जब ये कोन सेल्स स्टिमुलेट होती हैं तो हमारे माइंड के डिफरेंट सेगमेंट स्टिमुलेट होते हैं, यानी हम अपने बॉडी के अंदर अलग अलग कलर की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे होते हैं जब हम अलग अलग कलर्स को 3D विजुअलाइजेशन के द्वारा उस हीलिंग स्पेस में पहुंचकर देख रहे होते हैं। जैसे एक ट्यूनिंग फॉग के पास दूसरे ट्यूनिंग फॉग को लाया जाए तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, और जो कम वाइब्रेशन वाला ट्यूनिंग फॉग है वो हाई वाइब्रेशन वाली ट्यूनिंग फॉग की फ्रीक्वेंसी को ले लेता है और उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रिजोनेंस। सेम टू सेम जब हम 3D विजुअलाइजेशन प्लेट्स के द्वारा अपने आईज के रेटिना के कोन सेल्स के द्वारा उस कलर को कुछ देर के लिए हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में फ्लो करवाते हैं, तो उसका आफ्टर इमेज हमारे माइंड में स्टोर होता है और वो आफ्टर इमेज हमारी बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट करना शुरू करता है और वो फ्रीक्वेंसी हमारे उस चक्र के एनर्जी से रिलेटेड होती है। तो अगर चक्र कम या ज्यादा एनर्जी पर वाइब्रेट हो रहा है तो वो उस वाइब्रेशंस के साथ आकर ट्यूनिंग फॉक की तरह रिजोनेट होना शुरू होगा और वो एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है कॉन्सेंट्रेशन एंड क्योर, यानी आप उस 3D इमेज को जब आप कॉन्सेंट्रेशन होकर देखते हैं, 2 से 3 मिनट में आपको 3D इमेज दिखना शुरू होता है, फिर आपको 21 टाइम एंटी क्लॉकवाइज आइज को रोटेट करना है, 21 टाइम क्लॉकवाइज, और फिर आंखें बंद करनी है, उसका इमेज यहां पर आपको विजुअलाइज करना है और उस कलर की फ्रीक्वेंसी को बॉडी में एब्जॉर्ब करते हुए पर्टिकुलर जिस चक्र में वो कलर को लेकर जाना है और उस चक्र को वहां पर रोटेट होते हुए इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है। यह तरीका है आपके एनर्जी बॉडी के चक्रों को एक्टिवेट करने का, कंसंट्रेशन एंड क्योर मेथड, स्टीरियोग्राफिक इमेज मेथड। इससे आसान शायद ही कोई तरीका होगा चक्रों को एक्टिवेट करने का। चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए कलर फ्रीक्वेंसी, विजुअलाइजेशन, साउंड फ्रीक्वेंसी, मंत्रास, बहुत सारे मेथड होते हैं। यह सबसे आसान तरीका है, एक बच्चा भी कर सकता है, एक बूढ़ा भी कर सकता है, एक हेल्दी पर्सन भी कर सकता है, एक डिजीज पर्सन भी कर सकता है, एक बेड रिडन पेशेंट जो ना प्राणायाम कर सकता ना योग कर सकता, आईसीयू में एडमिट पेशेंट भी ये 3D विजुअलाइजेशन कर सकता है। इसीलिए ये डिजीज को हील करने में बहुत आसान और इजीएस्ट और इफेक्टिव मेथड है। जो लोग आईसीयू में है या डिजीज की वजह से पैरालाइज्ड हैं, बेड पर हैं, अगर वो लोग भी ये 3D इमेज विजुअलाइजेशन करते हैं तो ये चक्र और ये फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट एक्शन एक्टिवेट होना शुरू होती है। इतना कारगर है ये साइको निरोबिक का 3D इमेज विजुअलाइजेशन। इसको आपको दिन में एक बार जरूर करना है, सातों को, चाहे तो आप एक बार में सातों करें या अलग अलग समय में करके सात। तो क्या क्या हुआ, निरोबिक स्पा एक बार, एनलाइटनिंग निरोबिक एक बार, ब्लिसफुल निरोबिक 2 बार, इसके अलावा निरोबिक एक्सरसाइज अगर आप डिजीज हैं तो दिन में 3 बार और डिजीज नहीं है तो 1 बार, और 3D इमेज विजुअलाइजेशन पूरे एटलीस्ट सारे चक्रों को 1 बार। इतना अगर आप करते हैं तो आप ये समझिए जो वैदिक समय में, गोल्डन एज के समय में रास, रंग और नाद, यानी कि जो जेम पहनकर अपने आप को हील करते थे देवता, जो नाद म्यूजिक के द्वारा, जो नाद मंत्रोच्चारण के द्वारा अपने चक्रा को एक्टिवेट करते थे, और जो रास मुद्राओं के द्वारा और डांस के द्वारा एक्टिवेट करते थे, उतना ही इफेक्ट आज 21st सेंचुरी में उस गोल्डन एज का आज भी हम मॉडर्न वे में ले सकते हैं। और ये जो मेरे पीछे आप एक बॉडी देख रहे हैं, 7 चक्र, इनको एक्टिवेट किया जा सकता है इस मेथड के द्वारा। कितना आसान है, कितना इजी है, लेकिन जब मैं लोगों को ये बात बताता हूं तो उनको लगता है कि सर इतना सारा करना पड़ेगा, इसके लिए तो समय नहीं है। बिल्कुल सही बात है, उनके पास समय नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि नेटफ्लिक्स देखना है, क्योंकि अमेजन प्राइम देखना है, क्योंकि दिन में 4 बार न्यूज सुनना है, क्योंकि व्हाट्सएप को तो दिन में कम से कम 200 बार चेक करना है, क्योंकि फेसबुक पे तो कम से कम 5 बार जाना है, क्योंकि PNPC करना है, पर निंदा पर चर्चा करना है, क्योंकि गवर्नमेंट को गालियां बकना है, क्योंकि दूसरों को ब्लेम करना है। अब सोच के देखिए, इतनी सारी एक्टिविटीज हैं तो फिर कहां समय मिलेगा, इसमें उनकी कहां गलती है भाई। तो मैं एक ही बात बोलता हूं कि देखिए, कोई जरूरत नहीं है आपको करने की। अगर आपके पास समय नहीं है तो मत करिए, समय आपको मिल ही जाएगा। कब मिलेगा सर, जब आप डिजीज्ड हो जाएंगे, जब हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, जब रिश्तेदार देखने भी नहीं आएंगे, जब केवल डॉक्टर भी एक ही बार 2 बार देखेगा आपको आके, ना आप कहीं जा पाएंगे, ना कहीं कुछ काम कर पाएंगे, सारा दिन समय ही समय रहेगा। फिर आप करेंगे और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी सर, ये आपकी च्वाइस है। लेकिन तब भी समझ नहीं आता, हाँ तब फिर वहां पर हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं कि बहुत बड़ा बिल बन गया, बहुत सारे पैसे ले लिए। भाई वो उनका काम है, प्रोफेशन है, आप भी अपने प्रोफेशन में पैसा लेते हैं, कोई भी चीज फ्री की तो देते नहीं है, तो वहां पर क्यों गालियां बकना। माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी। इस बात को जितना जल्दी समझ लें अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो हॉस्पिटल के बेड पे तो समझ आएगा ही आएगा, च्वाइस आपकी है, राइट। और मैं तो ये बात डॉक्टर होने के बाद बोल रहा हूं, क्योंकि एक डॉक्टर होने के बावजूद मेरा इस जो मैं ये कोर्स में बोलता हूं, जो लाइन में बोलता हूं, जो कैंपेन मैंने शुरू की है माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैं अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट करता हूं। क्योंकि बीमारियों को नहीं पता कि मैं डॉक्टर हूं, और बीमारियों को पता भी रहेगा कि मैं डॉक्टर हूं तो भी मुझे कोई कंसेशन नहीं देने वाली है वो, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है, मुझे भी अपने हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बस थोड़ा बहुत फायदा यह है कि मेरे सारे डॉक्टर फ्रेंड हैं, तो कोई डिजीज आएगी तो मुझे प्रायोरिटी में ट्रीटमेंट मिल जाएगा, लेकिन हीलिंग एंड क्योर मुझे अपना खुद करना पड़ेगा। समझ लीजिए, लाइफ है आपकी, च्वाइस है आपकी, समय कुछ नहीं होता, प्रायोरिटीज होती हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी में हेल्थ नहीं है, कुछ भी कर लें आप समय नहीं निकालेंगे, और अगर आपकी च्वाइस प्रायोरिटी में हेल्थ नंबर वन है तो फिर कुछ भी हो जाए, दीन दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप इन चीजों को छोड़ेंगे नहीं। तो पहला बात है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, साइकोनिरोबिक के साथ भी मैं ऐसा ही बोलता हूं, पहले आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो फिर विश्वास कैसे करेंगे। और इस्तेमाल करने का तरीका है 21 दिनों तक जो मैं बता रहा हूं उसे आंखें बंद करके मान के कर लें। 21 दिनों में अगर आपको रिजल्ट मिले तो फिर आप मान जाएं और करें, और नहीं मिले तो फिर आपकी च्वाइस है। लेकिन इतना श्योर मैं करता हूं 21 दिनों में इनर हैप्पीनेस, इनर पीस, इनर जॉय और हेल्दी फीलिंग आपको आनी शुरू हो जाएंगी। और अगर 3 महीना कर लेंगे तो चमत्कार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी को एक्टिवेट कर देता है। ये जो 7 इनविजिबल डॉक्टर हैं, ये हमारे इनविजिबल डॉक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कोई सीधी बात, नो बकवास। ये चक्र होते हैं, मानो या ना मानो, च्वाइस आपकी है। दिखाई नहीं देते अलग बात है, फील किए जा सकते हैं ये दूसरी बात है, ये समझदारी की बात है। घुमा फिरा के बात कर लो, इसको एक्टिवेट करने के हजारों तरीके हैं, हजारों साधनाएं हैं, बहुत सारे गुरु मंत्र होंगे, जाइए बाबाओं के पास, जाइए सीखिए, सीख सकते हैं। ये सबसे आसान मेथड है, इजिएस्ट चीजों की वैल्यू नहीं होती है। इसे मैं कॉम्प्लिकेट करके समझाऊंगा, बहुत लोगों को वैल्यू पता चलेगी, लेकिन मेरा काम है वैदिक नॉलेज को आसान तरीके से, सरल लैंग्वेज में लोगों को समझाना, प्रैक्टिकल वे में इंप्लीमेंट करवाना। अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, अगर आपके पास बहुत सारा समय है, तो आप बहुत सारे मेथड्स को एक्सप्लोर करिए, शॉपिंग करते रहें इधर उधर जाके। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं स्पिरिचुअल शॉपिंग मत करें कि ये स्पिरिचुअलिटी का ये वाला तरीका अच्छा है, वो वाला तरीका अच्छा है, ये मेडिटेशन अच्छा नहीं है, वो मेडिटेशन अच्छा है। किसी भी तरीके से किसी एक मेडिटेशन के साथ जुड़िए, बस अपनी स्पिरिट के साथ जुड़े, उस हायर पावर के साथ जुड़े, सारे मेथड अच्छे हैं। करके देखिए, कोई भी चीज करने से ही होगी, जब तक करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। आशा करता हूं ये बातें थोड़ी कड़वी जरूर लगी होंगी, लेकिन कभी कभी डॉक्टर को कड़वी दवाई देनी पड़ती है, तो कुछ कड़वी गोलियां मैं आपको देना चाह रहा हूं, लेकिन ये कड़वी गोलियां बहुत अच्छी हैं हेल्थ के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए। लीजिए, पानी के साथ लीजिए, दूध के साथ लीजिए, लेकिन लीजिए जरूर। चलिए आगे बात करते हैं, अब बात करेंगे विजिबल इनपुट्स की। अभी तक हमने इनविजिबल इनपुट और विजिबल इनपुट दो में डिवाइड किया। अब हम बात करेंगे विजिबल और इनविजिबल इनपुट। पहले हम बात कर लेते हैं इनविजिबल इनपुट्स की, यानी कि जो चीजें हम थॉट्स और इमोशन में लेकर आ रहे हैं उसका क्या है। ये भी तो इनपुट्स हैं जो हम अंदर में डाल रहे हैं, फूड है ये भी तो, माइंड का फूड, थॉट्स एंड इमोशन। गलत खाना खाएंगे तो डायरिया होगा, गलत थॉट्स लेंगे तो मेंटल डायरिया होगा। मेंटल डायरिया भी उतना ही प्रॉब्लमेटिक है, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है फिजिकल डायरिया से। तो समझते हैं कि हम इनविजिबल इनपुट्स क्या होने चाहिए। मैं आपको कुछ एनएलपी के गुरु मंत्र दे रहा हूं, जरा जुड़िए मेरे साथ। देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर सब लोग, दो चीजें। सबसे पहला पास्ट, एनएलपी में भी हमने पढ़ा कि पास्ट के पेनफुल एक्सपीरियंस हमारे प्रेजेंट को खराब कर देते हैं। पीएनपी आपको बताता है डोंट वरी अबाउट पास्ट। पास्ट के बारे में गिल्ट महसूस करना या उसके बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हम उसे बदल नहीं सकते। हाँ, एक काम कर सकते हैं, उसमें से क्या लर्निंग मिली, क्या लेसन मिला, उसे प्रेजेंट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि प्रेजेंट अच्छा हो जाए। किंटसुगी, बी किंटसुगी, यानी अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लेना। जो टूटा हुआ बर्तन है जापान में, उसे किंटसुगी के द्वारा आर्टिस्टिक वे में सिल्वर और गोल्डन, सिल्वर गोल्डन और इपोक्सी साल्ट की मदद से उसे जोड़ दिया जाता है और वो सुंदर बन जाता है, किंटसुगी। इसी प्रकार से आपकी लाइफ में जो जो घटनाएं अच्छी नहीं घटी, पेनफुल एक्सपीरियंस हुए, जहां जहां आप टूट गए थे, उन्हें वापस जोड़कर उसमें से लर्निंग निकालकर आप अपने आप को किंटसुगी बनाएं। अगला बात, फ्यूचर का फियर हर किसी को होता है, और ये फियर कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि हम प्रेजेंट को ही खराब कर लेते हैं। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, फ्यूचर का क्या होगा, सबके माइंड में ये पहला क्वेश्चन होगा और ये फियर भी होगा। लेकिन फ्यूचर आपके प्रेजेंट पे डिपेंड करता है कि जो काम आप प्रेजेंट में कर रहे हैं वही आपका फ्यूचर बनाएगा। तो फ्यूचर के बारे में सिंपल इतना कहूंगा, केवल प्लान करें और प्रेजेंट पे ज्यादा ध्यान दें, प्रेजेंट में एक्शंस लें, तो फ्यूचर अपने आप सिक्योर हो जाएगा। प्रेजेंट इज ए प्रेजेंट ऑफ गॉड। प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब गिफ्ट, गिफ्ट है वो गॉड का, इसीलिए उसे नाम दिया गया है प्रेजेंट। हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रेजेंट पे काम करना है और उसमें एक्शंस लेने हैं। अगला पार्ट पीएनपी गुरु मंत्रा, अपने आप को उस गॉड का, डिवाइन पावर का इंस्ट्रूमेंट समझें। यह समझें कि जो भी मैं कर रहा हूं मैं अपने हायर पर्पस के लिए कर रहा हूं, उसका मैं एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट हूं, वो मुझसे करवा रहा है। अगर आप इस फिलॉसफी को लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो आपकी हार के लिए भी आप जिम्मेदार नहीं, इसीलिए हार होने पर, फेलियर मिलने पर आपको टेंशन नहीं आएगी, और जीत गए तो घमंड नहीं आएगा। हार के लिए भी वो जिम्मेदार, जीत के लिए भी वो जिम्मेदार। सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड। फिर अगला पार्ट, अगला गुरु मंत्र बोलता है कि जब टफ टाइम चल रहा हो तब क्या सोचे, तब सोचना है कि वो हमें तराश रहा है, वो हमारी परीक्षा ले रहा है, हमें जानबूझकर डिफिकल्ट रोल दिया गया है ताकि हम अपने आप को और मजबूत कर सकें। और हम एक स्ट्रांग एक्टर हैं, हमारे पास बहुत सारी क्वालिटी दी गई है, हमें रोल अच्छे से प्ले करना आता है, बेस्ट एक्टर हैं, इसीलिए हमें टफ रोल दिया गया है। यह फिलॉसफी के साथ टफ टाइम को बिताया जा सकता है। अगला पार्ट, थिंक योर सेल्फ एज ए गॉड वर्कर। गॉड ने कुछ पर्पस दिया है, उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम यहां आए हैं। वी ऑल आर spiritual being coming here for ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड वी आर हेयर टू फुलफिल अवर हायर पर्पस एंड गॉड हैज गिवन अस यूनिक क्वालिटीज टू फुलफिल दैट पर्पस। गॉड ने कुछ यूनिक क्वालिटीज दी हैं उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए और वो हमारे अंदर इनबिल्ट हैं। अपनी उन क्वालिटीज को एक्सप्लोर करें, गॉड का जो दिया हुआ कार्य है उसको हम पूरा करके जाएं और अपने काम के द्वारा इस संसार को एक बेहतर प्लेस, एक बेहतर संसार, एक बेहतर जगह बनाकर जाएं दुनिया में रहने के लिए। कॉमन पर्पस ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग इज टू मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव इन। ये हम सबका कॉमन गोल है। उस कॉमन पर्पस में अपना अपना पर्पस अपने पैशन और अपने प्रोफेशन के हिसाब से चूज करें और इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को, इस संसार को अच्छे से अच्छा बनाकर जाएं जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरों के लिए गुड विशेस रखें और गुड विशेस के साथ लव और कंपैशनेट वाइब्रेट करें। हार्ट चक्र हमेशा एक्टिव होना चाहिए। अपने आसपास लव की फीलिंग हमेशा रखें। अपनी केयर करें, फैमिली मेंबर्स की केयर करें, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनकी केयर करें। जो भी आपके पास आता है, या तो वो आपके किसी अभाव में आया है, किसी चीज की कमी है उसके पास, इसीलिए वो आपके पास आया है, अगर आप फुलफिल कर सकते हैं तो कर दे, या वो आपके प्रभाव में आया है, आपसे इन्फ्लुएंस होके आया है, दोनों ही स्थिति में जितना मदद बन सकती है उतना कर दें। ये है पीएनपी फिलॉसफी। और अगला पार्ट, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। योर एटीट्यूड डिसाइड योर अल्टीट्यूड, यानी जो आपका एटीट्यूड होता है वही आपकी डिसाइड करता है कि किस हाइट तक आप जाएंगे। एंड ग्रेटिट्यूड इज द हाइएस्ट एटीट्यूड। योर एटीट्यूड डिसाइड योर अल्टीट्यूड एंड एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इज द हाइएस्ट एटीट्यूड। इस एटीट्यूड के साथ जिए, ग्रेटिट्यूड के साथ जिए। गॉड ने जो दिया है उसके लिए थैंक यू और मुझे और देते रहें। मैं इतना मुझे दें कि मैं लोगों की मदद कर सकूं और खुद भी एक स्वस्थ जीवन, हेल्दी जीवन, हैप्पी जीवन जी सकूं। 10th पॉइंट, कीप गिविंग एंड फॉर गिविंग। हमेशा देते रहें और फॉर गिविंग, गिविंग एंड फॉर गिविंग, जितना दे सकते हैं बांटे, नेचर को भी, दूसरों को भी, फॉर गिविंग भी। फॉर गिविंग मतलब माफ कर दें, दूसरों के लिए नहीं अपने लिए। कुछ इस तरह से जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। दिस इज द बेस्ट फिलॉसफी। अगर नहीं करेंगे माफ, उसका बुरा नहीं कर रहे हैं, अपना बुरा कर रहे हैं। जो गए हैं छोड़कर मिलेंगे अब अगले मोड़ पर, जो गए हैं छोड़कर मिलेंगे अगले मोड़ पर, उनका गम नहीं करें कि ये मुझे छोड़ के चला गया। अगर आपके अंदर क्वालिटीज हैं वो वापस फिर आएगा, चाहे वो पैसा हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे लोग हो। अगर आपको छोड़कर चले गए हैं और अगर आपने अपना चेंज कर दिया, अपनी वाइब्रेशन बढ़ा ली, वो सारी चीजें वापस फिर मिल जाएंगी अगले ही मोड़ पर। जो गए हैं छोड़कर मिलेंगे अगले मोड़ पर। ध्यान रखिए, गिव एंड फॉरगिव। अगली फिलॉसफी, गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन। भगवान एक है, एक ओमकार। किसी भी भगवान को माने, वो एक है, वो दिखाई नहीं देता, एनर्जी की फॉर्म में है, डिवाइन फोर्स, सिग्फा, स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, अलमाइटी। सिग्फा का नाम इस प्रकार से सिग्फा पड़ा, स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, अलमाइटी, वो डिवाइन पावर। चाहे उसे नानक कहें, चाहे खुदा कहें, कुछ भी कहें, वो है केवल एक। और सबसे बड़ा रिलीजन, धर्म जो है वो है ह्यूमैनिटी, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। और हम सब सोल किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और आपके सोलमेट आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, ये हमने ही डिसाइड किया था जन्म लेने से पहले। इनके साथ हमारी डेस्टिनी, हमारी जर्नी लिखी हुई है। हम यहां एक रोल प्ले करने के लिए आए हैं। ये किरदार जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी रोल हमारे रोल के साथ जुड़ा हुआ है। अपना किरदार अच्छे से निभाएं, उनके भी किरदार को निभाने दें, अपने डायलॉग बोलते रहें, चाहे दूसरे वाला डायलॉग कुछ भी बोले, आप अपने डायलॉग मत चेंज करें। शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, शिद्दत से निभाओ अपना किरदार। कितनी शिद्दत से? इतनी शिद्दत से कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। पर्दा तो गिरना ही है, लेकिन गिरने के बाद तालियां कितनी बजेंगी यह डिपेंड करता है कि आपने अपना किरदार कितनी शिद्दत के साथ निभाया। और द लास्ट पार्ट गुरु मंत्र, फील यूर सेल्फ एज MBBS, माइंड ब्रेन बॉडी सोल, होलिस्टिक कॉम्बो। यू आर नॉट ओनली ब्रेन एंड बॉडी, यू आर माइंड एंड सोल आल्सो। और ऐसी एक्टिविटीज करो जो आपके सोल पे स्माइलिंग ला सके, इनर लाफ, सोल स्माइलिंग। अगर वो एक्टिविटीज आप करेंगे जिससे आपका सोल खुश होता है तो फिर आप अनस्टॉपेबल हैं। अपनी सोल को खुश रखो, बॉडी और ब्रेन खुश रहे या ना रहे, माइंड खुश रहे ना रहे, अगर सोल खुश है तो सब कुछ खुश है। दीज आर द NPNP गुरु मंत्रा। आपने देखा होगा जब गाड़ी जो है बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो जो ड्राइवर की बगल वाली सीट होती है वहां पर जो व्यक्ति बैठा हुआ होता है अगर वो सोना शुरू कर दे, नींद में आ जाए, ठीक है, नींद आनी शुरू हो जाए उसे, तो थोड़ी देर बाद ड्राइवर जो है उसको भी उबासियां आनी शुरू हो जाती है और उसको भी नींद के झटके आने शुरू होते हैं। और ड्राइवर हमेशा अपने बगल वालों को बोलता है या तो जागते रहो या फिर तुम एक काम करो, तुम्हें नींद आ रही है तो तुम पीछे जाओ, किसी और को भेज दो। एग्री? ये बात सबने देखी होगी। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? मतलब इस आदमी का ब्रेन सोने वाला था, अब इसने इसको ट्रांसफर कैसे कर दिया? अब ये जो ड्राइवर के बगल में बैठा इंसान है अगर ये रोना शुरू कर दे तो ड्राइवर तो नहीं रोता, ये हंसना शुरू कर दे तो ये नहीं हंसता, ये सैड फील कर रहा है ये सैड फील नहीं करता, लेकिन जब ये सोना शुरू करता है तो ये इमीडिएट सोना शुरू कर देगा। ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। देखिए, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है, और इस मशीन में सॉफ्टवेयर डाला हुआ है थॉट्स का। तो जब थॉट्स आएंगी तो इसमें पोटेंशियल जनरेट, जब थॉट्स आएंगी, जब मैं आपको दोबारा बताता हूं इस क्वेश्चन को और फिर इसका आंसर बताता हूं। अगर हमारे आसपास जैसे ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा है, उसके बगल की सीट पे कोई सोना शुरू कर दे तो ड्राइवर को भी नींद आनी शुरू हो जाती है। इसका कारण क्या होता है कि जो एनर्जी है, स्लीप की एनर्जी, वो ट्रांसफर हो जाती है ड्राइवर के माइंड में। क्यों? ध्यान से सुनिएगा, हमारा ब्रेन एक इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, और इसमें सॉफ्टवेयर डाला हुआ है माइंड का। माइंड मतलब थॉट्स एंड इमोशन। तो जब हम हमारे माइंड में बहुत सारी थॉट्स चल रही होती हैं तो वो थॉट्स पूरी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, क्योंकि जो एनर्जी है ब्रेन की उसका पोटेंशियल कम हो जाता है जब ज्यादा थॉट्स आती हैं। इसीलिए कई बार जब ओवर थिंकिंग होता है, जब हम पजल्ड होते हैं, बहुत ज्यादा सोचना शुरू करते हैं, उसके बाद एकदम से इमीडिएट हमें टायर्ड लगता है, थका हुआ लगता है। क्यों? क्योंकि सारी एनर्जी ड्रेन हो गई। और जब हम शांत हो जाते हैं, यानी रिलैक्स होते हैं या सो जाते हैं या मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद हमें हाई फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि उस समय हमारे ब्रेन की जो एनर्जी थी वो सेव हो गई और हमारा ब्रेन का पोटेंशियल बढ़ गया। अब क्या हो रहा है, जब ये व्यक्ति सो रहा है जो बगल की सीट पर है, अब इसका माइंड क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, थॉट्स आनी बंद हो गई, यानी अब ये स्लीप मोड में गया, तो इसके ब्रेन का पोटेंशियल ज्यादा हो गया, एनर्जी ज्यादा हो गई। और ये जो ड्राइवर है, इसके माइंड में लगातार थॉट्स चल रही हैं, सामने क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कॉन्स्टेंट थॉट्स। इसका ब्रेन लोअर एनर्जी पे है और इसका ब्रेन हायर एनर्जी पे है। तो इमीडिएट स्लीप की एनर्जी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ ट्रांसफर होगा. एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट. जैसे पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहेगा, नीचे से ऊपर नहीं. गर्मी या टेम्परेचर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ आती है. करंट हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ जाता है. चीजें अगर एक बॉल को आपने ऊपर रख दिया तो वो ग्रेविटेशन की वजह से नीचे की तरफ गिरेगी, क्योंकि नीचे लो ग्रेविटेशनल फोर्स है. ऊपर जहां पर वो रखी हुई थी वहां ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा था. यानी कि कोई भी चीज एनर्जी तब तक ट्रांसफर होगी, मान लीजिए दो चीजें हैं, यहां से यहां एनर्जी तब ट्रांसफर होगी अगर ये हायर पर है ये लोअर पर है, और होने के बाद ये तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों के दोनों एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं आ जाते, इक्विलिब्रियम. यानी मान लीजिए दो बाल्टी आपने ली, एक बाल्टी में ज्यादा पानी है एक में बिल्कुल खाली है, और आपने पाइप लगा दिया तो पानी कहां से कहां बहना शुरू होगा, ज्यादा वाली बाल्टी से कम वाली बाल्टी की तरफ. कब तक? जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता. जिस टाइम दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा तो दोनों के दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे और एनर्जी का ट्रांसफर रुक जाएगा. सेम टू सेम एनर्जी हमेशा हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ जाता है. जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, अभी मेरी एनर्जी हाई है और मैं आप लोगों को एनर्जी दे रहा हूं, आप लोग मुझसे एनर्जी ले रहे हैं, चाहे वो डिजिटल माध्यम से ही क्यों ना हो. एक स्टेट ऐसा आएगा बोलते बोलते जब मेरा एनर्जी लो होते जाएगा और आप लोगों का एनर्जी बढ़ते जाएगा, और फिर उस स्टेट के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा. अगर उसके बाद भी मैं बोलते रहूंगा फिर क्या होगा, मैं लो होते जाऊंगा और मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, मेरी बातों का वोल्टेज कम हो जाएगा और आप लोगों की बातों का वोल्टेज बढ़ते जाएगा. फिर इसके बाद क्या होगा कि मैं एकदम बिल्कुल ड्राउजी हो जाऊंगा और आप लोग फुल एनर्जेटिक हो जाओगे. इसीलिए एज ए स्पीकर, एज ए कम्युनिकेटर, एज ए कंसल्टेंट, मैं उतना बोलता हूं जब तक मेरी एनर्जी और सामने वाले की एनर्जी बराबर आ जाए. उससे ज्यादा होने से फिर क्या होगा, मैं लो एनर्जी फील करता हूं. मुझे लगता है कि सेशन उतना ही बड़ा होना चाहिए जब तक मैं अपनी एनर्जी आपको दे सकूं. ठीक है, ये बात को मैंने कब फील किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के दौरान, क्योंकि वहां लगातार बोलना होता था और ऐसा होता था कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूं उससे सामने वाले की एनर्जी तो बढ़ जाती थी और वो लोग बोलते थे सर और सुनना है. लेकिन एक समय ऐसा आता था कि जब मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती थी. तो ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये एनर्जी का प्रिंसिपल हम समझ लें, अपनी एनर्जी को, अपने आप को एक एनर्जी बॉडी की तरह देखें और देखें हमारी कौन सी एक्टिविटीज हमारी एनर्जी को बढ़ाती हैं, यानी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग अगर घटा रही है उन्हें हटाना है लाइफ से, और कौन सी चीजें हैं, कौन से लोग हैं जो हमारी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, जो लोग हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं उनके साथ दोस्ती यारी बनाएं, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं उनसे थोड़ा दूर रहें. कौन सी एक्टिविटी है, न्यूज है, नेगेटिव न्यूज है, जो भी जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, फटाफट उनसे दूर रहें. एनर्जी सेविंग करना सीखें और एनर्जी गेनिंग करना सीखें. सेविंग मतलब जितनी आपने रात को एनर्जी ली है नींद के दौरान, मेडिटेशन के दौरान, उसे सेव करें. शानदार जिंदगी होती नहीं, बनानी पड़ती है, कुछ अपने अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से. तो बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करना सीखो, डिलीट करना सीखो, क्योंकि वो एनर्जी को ड्रेन करेंगी. एनर्जी ड्रेनिंग एक्टिविटी लिस्ट बना लें, इनसे दूर रहना है. एनर्जी गेनिंग एक्टिविटी इनको करना है. तो मैंने क्या बताया, ब्रेन जब जब ओवर थिंकिंग करेगा, नेगेटिव थिंकिंग करेगा, थॉट्स ज्यादा चलेंगे, ब्रेन का पोटेंशियल कम हो जाएगा. जब जब ये मेडिटेशन करेगा, स्लीप करेगा, रिलैक्स करेगा, ब्रेन की एनर्जी बढ़ जाएगी और ब्रेन बॉडी के साथ कनेक्टेड है, बॉडी एनर्जेटिक फील करेगी. अगर अभी आप लोग भी बोलना शुरू कर दें, मैं भी बोलना शुरू कर दूं, ये पूरा मिसमैच हो जाएगा एनर्जी का. अभी क्या हो रहा है, वन वे ट्रांसफर हो रहा है, मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन अगर सारे के सारे बोलना शुरू कर दें पूरा खिच 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 हो जाएगा और एनर्जी एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और 10 से 15 मिनट में यह सेशन पूरा खराब हो जाएगा, शमशान बन जाएगा, सब लोग छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे और उसके बाद एक घंटे तक आप लोग डिस्टर्ब फील करेंगे। एग्री? ये एनर्जी के प्रिंसिपल को हर जगह अप्लाई करें, एनर्जी गेनिंग एनर्जी ड्रेनिंग। आज के सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, कल फिर जुड़ूंगा 4 बजे आपके साथ। कल हम बात करेंगे गोल्डन एज में से लाइफस्टाइल, यानी कि फूड वाटर और एयर चार्जिंग कैसे करना है, किस तरीके से करना है और उसका क्यों करना है, क्यों जरूरत है फूड को चार्ज करना, वाटर को चार्ज करना, एयर को चार्ज करना, कैसे करेंगे और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। आज के सेशन को शुरुआत बंद करने के लिए, समाप्त करने के लिए एक शॉर्ट मेडिटेशन इस गाने के साथ, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ करेंगे। सब लोग ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे इस तरीके से और आंखें बंद करके जो सॉन्ग चलेगा, जो भजन चलेगा, उसे फील करते हुए आपको यह फील करना है, ग्रेटिट्यूड जो है वो बोलने की चीज नहीं है, फील करने की चीज है। क्या फील करना है? आप गॉड को किन किन चीजों के लिए धन्यवाद दे सकते हो, राइट? ज्ञान मुद्रा में
हाथ उठा देता हूं,
ये मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपने लैप में रख के आंखें बंद करेंगे और केवल बस ये सोचना है कि भगवान को मैं किन किन चीजों के लिए धन्यवाद दूं और इस गाने को सुनते जाना है, वो सारी चीजें आंखें बंद करके विजुअलाइज करनी है।
मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।
गॉड को धन्यवाद बोलते हुए, दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए, तो हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करने की जरूरत है। सुबह उठकर एक बार ग्रेटिट्यूड को फील करें, बस मन ही मन विजुलाइज करें किन किन चीजों के लिए आप गॉड को थैंक यू बोल सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें जबरदस्त रहें।